कहीं तुम भी इसलिए तो बोरिया बिस्तर नहीं समेट रही क्योंकि तुम अजाब आने का पता चल गया?
जी नहीं, इन दिनों आप नहीं हैं तो मैं भी जाके आराम करना चाहती हूँ। मुझ में काम करने का हौसला नहीं है।
क्या मतलब काम करने का हौसला नहीं है? क्योंकि रामीन तुम्हें धोखा दे के चला गया है।
उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, कुछ ऐसी तदबीरें थीं उसके जहन में कि मुझे यकीन है कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया है, या तो उस पर कोई मुसीबत आ गई है या उस पर कोई मुसीबत ढाई गई है।
मैं देख रहा हूँ कि तुम उसके लिए रो रही हो। किसने उस पर मुसीबत ढाई है? मैंने?
उसका नहीं पता, अगर पता होता तो एक लम्हे के लिए भी चैन से नहीं बैठती।
ठीक है, अगर तुम्हें भी जाना है तो जाओ, लेकिन छुट्टी पूरी होने के बाद अपने बाप की दवाइयों का खर्चा किसी दूसरे काम से निकाल लेना।
बाबा, आपके लिए फोन है।
कौन है?
पता नहीं, कोई आपका जानने वाला है।
बहुत शुक्रिया। हेलो,
जावेद यान साहब?
हाँ, मैं बात कर रहा हूँ।
अजाब,
तुम कौन हो?
अभी तक समझ में नहीं आया।
रामीन, ये तुम हो?
चलो अंदर। भाई, हमने तो कुछ भी नहीं किया ऑफिसर साहब।
ले जाओ।
अजीब तरह से फंस गए हैं यहाँ तो हम। अरे, तुम धक्का क्यों दे रही हो हमें? हम जा तो रहे अंदर।
तुम अपना काम करो। अगर तुम मेरे एक सवाल का ठीक जवाब दे दो तो मैं समझ लूंगा कि ये पता तुम्हारे घर का ही पता है और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि फिर तुम दोबारा यहाँ गलती से भी नजर ना आना। कहीं इस थाने में किसी ने तुमसे ये ख्वाहिश तो नहीं की कि जब तुम बाहर जाओ तो उसके जानने वालों से कहो कि यहाँ वो फंस गई है? याद रखना, झूठ बोलोगी तो भी मैं समझ जाऊंगा। क्या ये भी उसी ने लिखा है? क्या कहा उसने? उसने तुम्हें यह कह दिया होगा कि वो तुम्हारे लिए मेरे सामने सिफारिश कर देगी क्योंकि तुमने उसे नमाज पढ़ने सिखाई है। ऑफिसर, मरकज का कंप्यूटर चल पड़ा है लेकिन उस पर दर्जशुदा मालूमात मिट चुकी है। ऑफिसर साहब, उस लड़की का क्या करूं जनाब? आज रात यही रहने दूं उसे।
वो खुद यही कहती है कि रमजान खत्म होने से पहले कोई उसकी खोज में आ जाएगा। याद रखो, वो कैदी नहीं है, उससे कुछ चाहिए तो दे दो। खुदा हाफिज।
फोन नहीं उठा रहा।
कौन?
शाहीन भाई, दोपहर से उसे जितना भी फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा।
एक बात बताओ, तुम क्यों से इतना याद कर रहे हो? इतनी जल्दी तुम उससे किया हुआ झगड़ा भूल बैठे?
बाखुदा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था बस। मैं कंपनी में अकेला हूँ तो पूछ रहा था, मातहत ले आऊं उसे।
जी नहीं, इस काम की इजाजत नहीं दूंगा। अब ना तो मेरा कोई रामीन नाम का बेटा है और ना ही शाहीन, समझ गए? उठा लो इसकी प्लेट भी। वो भी अपना सामान लेकर अपने भाई के पास चला गया है।
अरे, मतलब शाहीन भी चला गया? मजाक कर रहे हैं आप।
अब शाहीन किसके लिए गया?
अब मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके इस बेटे ने भी आपको धोखा दे दिया है ना?
डॉक्टर,
मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। मेरा मकसद यह है कि इस लड़के को एक भी अच्छाई नसीब नहीं हुई है जनाब। मैंने पहले भी कहा था। अच्छा है, इन दो तीन दिनों में आपके दोस्त और दुश्मन का पता चल जाए।
देख रहा हूँ, तुम बेफिक्र रहो। फरीदा, तुम मेरा खाना लेकर नहीं आओगी क्या?
जनाब, सलाद खाइए फिलहाल।
उसका नंबर बंद जा रहा है, बाबा कह रहे हैं वो भी घर छोड़ गया है। और कुछ तो नहीं चाहिए आपको? बाखुदा, अम्मी, मुझे खुद भी इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं खुद इतनी परेशान हूं, मुझे लगता है कि उसे भी बाखुदा अम्मी मुझे खुद भी इससे ज्यादा कुछ नहीं पता मैं खुद इतनी परेशान हूं मुझे लगता है कि उसे भी भिनक पड़ गई कि मैं आपको चाचा के घर ले गई थी।
शाहीन?
फिर कह रही हैं शाहीन? हाँ, वही शाहीन जिसकी किसी को भी फिक्र नहीं है। अब सहरी कीजिए जल्दी से। मुझे लगता है कि बाबा भी यहाँ से चले जाएंगे और रह जाएंगे मैं और आप।
हेलो,
उठो सहरी कर लो, वक्त ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास।
शाहीन ये तुम हो?
2-3 दिन रह गए हैं तुम्हारी जिंदगी के, 4 दिन बाद तुम इस वक्त अपनी कब्र में सो रहे होगे।
बाबा क्या हो गया?
तुम लोग अब तक क्यों जाग रहे हो? तुम में से किसने मेरा मोबाइल नंबर अरे गरे को दिया है? अभी पता चल जाएगा।
बाबा आप रात के इस वक्त किसको फोन करना चाहते हैं?
अपने मुंह पर पानी मारो ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम क्या खा रहे हो। अब ये कौन है इस वक्त?
मत उठाइए।
मगर क्यों?
बस यूं ही।
सलाम अलैकुम, फरमाइए।
मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुमने मेरा नंबर इधर उधर बांटा है या तुम्हारे उस बेशरम बेटे ने?
जलील, उस ज़ईफ आदमी को क्यों तंग कर रहे हो आधी रात को?
जी नहीं, मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है ही नहीं कि मैं किसी को दे सकूं।
हाजी कौन है इस वक्त?
मेरा बेटा मेरे सामने बैठा हुआ है और उसने किसी को फोन नहीं किया। यकीन कोई और तुम्हें तंग करना चाह रहा होगा।
बाबा क्या चाचा हैं?
मसलन कौन? मतलब तुम मुझे तंग करने के लिए या मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मेरा नंबर अरे गैरे को नहीं दे सकते, या मेरे बेटों को जज्बाती नहीं कर सकते कि वो मेरे नंबर को हर तंग करने वालों को दे दें और वो मुझे फोन करके बला और अजाब का नाम बताए? देख लो कबर में टांगे लटकी है तुम्हारी, मगर तुम्हारी वजह से शाहीन भी अपने भाई के पास चला।
ऐ काश अपने भाई के पास गया होता।
कौन अपने भाई के पास गया है बाबा जान? शाहीन?
फरीदा?
रुको जरा, मैं अपनी
फरीदा क्या हुआ है?
तुमने मेरा नंबर जिसको भी दिया है उसे बता दो मैं अपनी बेटी और अपनी नकाबपोश औरत की तरह नहीं हूँ जो इन बचकाना हरकतों से गश खा जाऊं या घबरा जाऊं।
जलील, मैं यहां तक कि जब सड़क से तुम्हारे घर पर फोन कर रहा था तो बहादुरी से मोबाइल नहीं लिया कि कहीं तुम्हारा नंबर उसके मोबाइल में ना आ जाए। तुमने फजूल का बहाना तलाश किया है मुझे फोन करके रजिस्ट्रेशन करने का।
बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। उनसे कह दो, उन सब से कह दो, उन्हें ये बता दो कि हो सकता है कि कभी ना कभी तुम लोगों के नसीहतों का धोखा खा जाए, मगर ये मुहाल है कि इन बातों से तुम लोग उसे दीवानगी या घबराहट की जद पे छोड़ दो कि वो पीछे हट जाए। तुम्हारी आफत के इंतजार में हूँ, मैं तुम्हारी आफत के इंतजार में हूँ हाजी खलील साहब ज़्यादा। दुआ करो कि अजाब आ जाए, लेकिन लेकिन उसके बाद तुम लोगों को एक ऐसा अजाब दिखाऊंगा, एक ऐसा अजाब दिखाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे साथियों को और उस घर के बेइज्जत लोगों को कि तुम लोग हज खा जाओ।
ये क्या बोल रहे हैं आप बाबा जान? क्या अब तक आप कुछ बताना नहीं चाहते? अगर उसने आपको कुछ बुरा भला कहा है तो उसी के अंदाज में बात करता हूँ।
क्या तुमने उसका मोबाइल नंबर किसी को उसे तंग करने के लिए तो नहीं दिया?
मैं? क्या जबरदस्त सोच है। नंबर तो है मेरे पास, एतराफ करता हूँ मैं, मगर ये तरकीब मुझे नहीं सूझी थी।
ला इलाहा इल्लल्लाह।
कहाँ चले इस वक्त? अभी तक तो कुछ खाया भी नहीं आपने। खुदा गारत करे इस जबान को जो भूख मार देती है।
आखिर मैंने क्या कहा जो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल आखिर मैं समझ नहीं पाया बाबा जान, चचा के अजाब से हमें खुश होना चाहिए या गमगीन?
فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ
وہ ہرگز متکبروں کو دوست نہیں رکھتا اور جب بھی انہیں یہ کہا جائے کہ خدا نے کیا نازل کیا
يَحْمِلُوا
أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ
يُزِلُّونَهُمْ
آگاہ رہو کہ ان سے پہلے بھی ایسے بہت سے دور گزرے ہیں، ان سے پہلے بھی ایسے کافر تھے جنہوں نے کتنے ہی زیادہ مکر کیا،
خدا سخت بنائی انہا را از پای ویران کرد و بر سرشان
ثم یوم القیامت یخزیهم و یقول این شرکائی الذین کنتم،
آگاہ رہو کہ ان سے پہلے بھی ایسے بہت سے دور گزرے ہیں، ان سے پہلے بھی ایسے کافر موجود تھے،
قال الذين
اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين،
من حيث لا يشعرون قال الذين
اوتوا، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے، درحقیقت آج خواری اور عذاب کا دن ہے کافروں پر،
ان الخزی
تو مجھے سچ سچ بتا دو یا ابھی اسی وقت اپنا سامان اٹھا کے باہر چلے جاؤ اس گھر سے۔
سوسن، سوسن، عبدی صاحب آگئے کیا؟ بی بی جی، بی بی جی
صاحب،
ہلو، بات سنو، ابھی اسی وقت اٹھو اور یہاں چلے آؤ تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ تمہارا اور میری اس بیوی کا معاملہ کیا ہے۔ میں گھر پر ہوں، ہاں، خدا حافظ۔
تم کس سے میرے بارے میں یوں بات کر رہے ہو؟
اس سے زیادہ برا بھلا بھی کہوں گا ہنگامہ، دیکھو کیا حال کرتا ہوں تمہارا اگر تم نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا۔ تم نے کسی کی امانت کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ میں اپنے ضمیر کے عذاب سے دبئی میں ایک منٹ بھی چین سے نہیں بیٹھ سکا؟
کمپنی کے مالک ڈاکٹر صاحب کے نوکر حاضر ہیں۔ صبح خیر، آپ کو نیا بیگ نصیب ہو گیا بھائی،
آپ بتائیے تو ہم کیا کریں؟
کس چیز کا؟
آپ نے کہا کہ آپ اوپر ہیں تو ہمیں سے ایک کو نیچے بھی ہونا چاہیے نا۔
ٹھیک ہے بھائی، بعد میں کچھ کرتا ہوں اس کے بارے میں۔
السلام علیکم۔
سلام، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شاہ رخی صاحبہ کہاں ہیں؟
وہ نہیں آئیں صاحب، انہوں نے فون کر کے بتا دیا کہ اب نہیں آئیں گی۔
انہوں نے آپ سے بات کی ہے کیا؟
جی، خود مجھ سے بات کی ہے صاحب، میں نے ان سے کہہ دیا کہ ان کی جگہ پہ بیٹھ جائیں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔
سر آپ فکر مت کریں، میں اس سے زیادہ اچھا کام کر کے دوں گی، پہلے بھی میری حق تلفی ہوئی ہے، اس سیٹ پر بیٹھنا میرا حق بنتا تھا مگر اسے یہ جگہ دے دی گئی۔
ٹھیک ہے، اب بیچ میں نئے قصے مت شروع کر دیجیے گا، جائیے اپنے اپنے کاموں پہ۔
جناب میں سمجھا نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
کس کا؟
اندرونی مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ ڈاکٹر صاحب،
جائیے اپنے اپنے کاموں پہ۔
کیا مزیدار منظر ہوتا ہے نا۔
किस चीज का मजेदार मंजर होता है?
यही जो तुम्हें कुछ लोग देखते ही सलाम साहब शुरू कर देते हैं और सरकार इसका क्या करें, बादशाह सलामत इसको क्या करें पूछने लगते हैं।
हाँ। आज तुम्हें एक बात बताता हूँ महमूद, तुम्हारी दुनिया बहुत ही छोटी है। अगर तुम्हें चार सलाम करने वालों और साहब इसका क्या करूं, साहब उसका क्या करूं की तलाश है तो तुम कुछ भी नहीं बन सकोगे। लेकिन मैं, मेरी तमाम फिक्र इन कामों को आखिर तक पहुंचाने की है। चार दिन, सिर्फ चार दिन ये कंपनी मेरे हाथ में हो तो सब दिखा दूंगा कि काम करना किसे कहते हैं।
नहीं, तुम्हारी जगह नीचे की नहीं थी डॉक्टर साहब। हाय खुदा की कसम, ये कमबख्त जानवर बनाने वाली मशीन है जो दुम्बे को भी भेड़िया बना देती है और कपड़े में छुपे भेड़िए को भी दुम्बा बना देती है। ठीक, तो तुम नसीहत कर रहे थे कुछ इख्तदार पाने वाले भेड़िए?
जल्दी से बको के तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था, और बोलने के बाद रास्ता नापो दफा हो जाओ।
हाँ, अब कोट उतारने के बाद एक शरीफ भेड़िए बन गए। कुछ नहीं डॉक्टर, कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि अब कौन सा भेड़िया उस बूढ़े भेड़िए को फोन पे तंग करने और मारने के लिए दर पे खड़ा हो गया।
ये कौन सी बकवास कर रहे हो तुम अपनी तरफ से? मैं तो कल रात उस वक्त घर पे था जब तुम्हारे ताया को फोन करके डराया धमकाया गया था।
मैं कल रात घर पर ही था डॉक्टर साहब, तुम अपने मोहतरम ससुर से पूछ सकते हो।
कोई जरूरत नहीं है पूछने की, ये उसका काम है जिसे तुमने किराए पे खरीदा है या फिर शाहीन का।
किराए पर? वो भी इतने सारे दुश्मनों के होते हुए इंसान पागल ही होगा कि किसी को किराए पर खरीदे डॉक्टर साहब, है ना? तुम चाहते हो कि मैं मान जाऊं कि ये सब शाहीन का काम था, है ना?
कहीं आप तो मुझे यकीन नहीं दिलाना चाह रहे कि ये काम आपका नहीं है।
ठीक है, शाहीन ये चाहता था कि अपने बाप को डराए, लेकिन जो शख्स कल बाखबर हुआ है कि शाहीन ने रामिन के साथ क्या किया है और घर में किसी को नहीं बताया, वो कौन है डॉक्टर साहब? हाँ, क्योंकि वो डर गया है कि रामिन की मौत की खबर बाज लोगों को बुरी तरह हिलाकर रख देगी।
पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारी किसी बात को मानता नहीं, मतलब यकीन ही नहीं आता मुझे। दूसरी बात यह कि जब मैंने देखा कि शाहीन खुद ही उठ के चला गया है तो मैं भी तुम्हारे पापा की तरह अम्मी और फरीदा को तवज्जो देने लगा हूँ।
कब तक तवज्जो डॉक्टर साहब? बला के आ जाने के बाद तक?
तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हाँ, क्या तुम्हारा दिल बहुत बेचैन है अपने ताया के परेशान होने और ताई के मर जाने के लिए? तो खुद चले जाओ, उनके बेटे की मरने की खबर उन्हें सुना दो, मुझे क्या। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई सौदा करने आए हो कि मुझे धमका सको कि जाके नहीं बताओगे? हाँ, खूब, बस ये मत कहना कि यहाँ की कोई मैनेजमेंट मांग रहे हो, क्योंकि मैं किसी लायक आदमी के साथ काम करता हूँ। अब बोलो।
ये नहीं बोलूँगा, मेरी दौलत मुझे लौटा दो। चलो, तुम्हारी बीवी तुम्हें मुबारक हो, मगर जो मेरी बर्बादशुदा जिंदगी चाचा ने खराब की है मुझे लौटाओगे?
जरूर मेरी जेब में रखिए, निकाल के दे देता हूँ। मुझसे क्या वास्ता बंदा है खुदा? कुछ झूठ सुने तो हैं मैंने कि तुमने फरीदा पर काफी खर्च किया है ताकि अपने आप को दिखा सको। बहुत से बहुत हद से हद मैं ये कर सकता हूँ कि उस खातून पर तुमने जो खर्चे किए हैं वो वापस लौटा सकूँ। बस
रोजाना यहाँ आता था और यहाँ बैठकर अपनी बर्बादशुदा आरज़ुओं के लिए सौदेबाजी करता था। ठीक है, तुम यकीन नहीं कर सकते होगे ना, खुश रहो अपनी इस दो तीन दिन की हुकूमत पे सदर साहब।
क्या हुआ अब? क्या दो तीन दिन? हाँ, बैठो को चाय वाय पी कर जाना, कहाँ जा रहे हो?
घर जाके भी चाय पी सकता हूँ डॉक्टर साहब। वैसे हाँ, मैं भूल गया था कि इस दफा कोई सौदा करने नहीं आया हूं। शाहीन से कहो खामखा इन बचकाना फोन के खेलों से मैं बाप को डराने की कोशिश ना करें। अगर यही करना है तो बहादुरी से कह दे, वही काफी है। बहादुरी बुरी तरह अपने गजबशुदा हक के पीछे दौड़ रहा है। सिर्फ इतना ही काफी है कि मैं बेकसूर था और कुछ नहीं कर सकता, ताकि बहाने उनका पता बहादुरी साहब को दे दे, ताकि वो खुद ही बला के नाजिल होने के बदले बला का काम कर जाए। लेकिन शाहीन इससे कहीं ज्यादा अहमक है कि इन बातों को समझ सके डॉक्टर जानी। तुम खुद ही बहादुरी के किस्से मौजूद थे, रामिन ने उसे मार के खाना नशीन बना दिया, वरना वो शख्स ये काम पहले ही कर सकता था डॉक्टर जानी। बाय बाय।
डॉक्टर को चबा गया।
भाई मैं अपनी गाड़ी हाईवे पर चला रही थी कि अचानक ये चोर लड़की गाड़ी से छलांग लगाकर निकल गई और भागना शुरू कर दिया। ये हजारवीं दफा बता रही हूँ मैं।
कौन सा हाईवे?
कोई भी हाईवे हो, क्या फर्क पड़ता है। इनसे ये पूछिए थाने क्यों नहीं गई रिपोर्ट लिखवाने।
मैं तुम्हारे बच्चों जैसे सवालात का जवाब हरगिज नहीं दूंगी। तुम ये अपने चूसे वकील को उठा के यहाँ लाए हो ताकि मुझसे पूछगछ करे।
तुम सवाल मत करो। अच्छा आप मुझे जवाब दो, तुम थाने क्यों नहीं गई रिपोर्ट लिखवाने?
आपकी वजह से। शायद आप भूल रहे हैं कि इन साहब ने आपसे जोर जबरदस्ती की थी कि अपनी सनद को जमानत के तौर पे रखवा दो ताकि जब ये लड़की अपनी चाल चल जाए तो तुम्हारी अपनी टांग फंसी रहे।
कैसी चाल?
तुम्हें धोखा देने की चाल, और तुम कि जिसकी अकल आँखों पे टिकी हुई है। जो चाल इन साहब ने उस लड़की के साथ मिलकर तुम्हारी अकल पे पर्दा डालने के लिए चली है। तुम क्या समझते हो कि ये लड़की सिर्फ इसलिए इतनी अदाएं दिखाने और ड्रामे कर रही थी ताकि यहाँ से ये चार बूंदे बालियां और हार वगैरह और मेरा कीमती ब्रेसलेट चुरा के ले जाए?
क्या वाकई? जितना भी वक्त गुजरता जा रहा है उतना ही आपके खोए हुए जवाहरात में इजाफा हो रहा है।
तुम रुको जरा, मेरा दिमाग कुछ समझ नहीं पा रहा।
यही तो रोना है, तुम इतने बेवकूफ जो हो।
ये बेवकूफ है, मगर आपने जो इतना बड़ा ड्रामा खेल रंगे हाथों पकड़ लिया था तो फिर एक कागजात जमा करवाने के लिए पुलिस को इतना क्यों नहीं दी? हाँ
बिल्कुल ठीक। पहली वजह ये कि सियामा खुद आए और ये समझ जाए कि तुम कितने बड़े आस्तीन के सांप हो, और फिर अब भी पुलिस के पास जाने में देर नहीं हुई है।
आप जहमत मत कीजिए, मैंने पुलिस को चोर की तमाम तर निशानियाँ बता दी है।
क्या पता तुम सही कह रहे हो या नहीं।
एक मिनट रुकना जरा, तुम दोनों से मुखातिब हूँ। क्या तुम ये बता सकती हो कि तुमने इतने अजीब और गरीब खेल को कैसे समझा?
जनाब इनसे पूछे कि इतनी बड़ी फनकार चोर सिर्फ एक गले के हार के लिए अपने आप को बदनाम क्यों करेगी?
बस बस, अब मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम मुझे ये सिखाओगे कि अब ये पूछो अब वो पूछो।
ताज्जुब है, मिलाकर उसे भी एक जुमला कहा तुमने। मैं खुद गाड़ी में उसके मुँह से सब उगलवा चुकी थी। जिस रात मेरे जेवरात खोए थे मैंने उस पर शक किया मगर ये जाहिर नहीं किया। फिर दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाते हुए पूछा, वहाँ मैं समझ गया कि वो डॉक्टर के पास जाने पर रगबत नहीं रखती।
डॉक्टर के पास जाने की रगबत नहीं थी, उसकी वजह बता सकती हैं आप?
तो जाहिर है, अगर उसे डॉक्टर के पास ले जाती तो वो वहाँ भूलने का ड्रामा और ज्यादा कर सकती थी। अब समझे कि जब तुमने शोर शराबा करके उसे डॉक्टर के पास जाने का हुक्म दे दिया था तो कैसे उसने अपनी चाल बदल ली थी और वो जेवरात चुराने में लग गई थी।
उसके बाद
कुछ नहीं, गाड़ी में भी बहाने करती रही कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, हम नहीं जाते ना वगैरह वगैरह। मैं भी उसे सवालात में फंसाने पर डट गई। मैंने कहा अगर सच नहीं बोलोगी तो अभी इस वक्त मैं पुलिस के पास ले जाऊंगी। अलबत्ता उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जेवरात उसके पास हैं। उस वक्त तक ये समझ रही थी कि मेरे जेवरात उसने घर में कहीं छुपाए होंगे। उसके बाद का तो मैं 1000 दफा बता चुकी हूँ।
ये बताओ तुम इतने बजित क्यों थे कि मैं इस चोर लड़की को घर में रखूं? क्या हुआ, चुप क्यों हो, बात करो ना।
जनाब याद रखिएगा, आपने एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि उन्होंने ये तमाम मनगढ़ंत कहानियां फोन पर आपको क्यों नहीं सुनाई थी।
सुसन, वो मेहमान खाने का पर्दा भी ड्रैग क्वीन के पास ले जाना।
बस भी करो, चलो पूछ भी लेता हूँ। जवादी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, सच सच बताना। अगर तुम खुद मेरी जगह होते तो क्या अपनी बीवी को पुलिस के हवाले कर देते कि वो लोग उससे उगलवाएं? हाँ, मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में मजीद किस किस जगह उसने मुझे धोखा दिया है और मैं समझ नहीं पाया। जवादी, ये SHO इनायती जो हमारे साथ अलेक्स अलेक रखता है, क्या ये इस लड़की का पता लगा सकता है?
आपने पहले भी पूछा था, मैंने कहा था अब वो फौज में है, 3 साल हो चुके उसके तबादले को।
हाँ मैंने सुना नहीं।
देखें, क्या आप किसी तरह अपनी बेगम को किसी चीज से धमका नहीं सकते?
धमकाऊं?
उनसे इकरार लेने के लिए?
मसलन कैसी धमकी? طلاق کا بولوں کہ پلٹ کر مجھے بولے کہ تم اس لڑکی کے چکر میں مبتلا ہو جبکہ اسے چور مانتی ہے؟
طلاق کا نہیں کہہ رہا. آپ کو یاد ہے کہ گاڑی میں مجھے بتا رہے تھے کہ آپ کی بیگم نے آ کر سب سے کہہ دیا کہ یہ کنویں والی اس کی بھانجی ہے؟
جاؤ نا بھائی، اس سے کیا ہوگا؟ تم چاہتے ہو میں بیگم سے یہ کہہ دوں کہ منہ کھولو؟ اگر تم نے اقرار نہیں کیا تو میں تمہاری پاگل دوستوں سے کہہ دوں گا کہ میری بیوی عجیب پاگل ہے جس کا مجھے خود پتہ نہیں تھا.
جناب، آپ نے بھاگم بھاگ اپنے آپ کو دبئی سے یہاں پہنچایا ہے تاکہ ہر چیز کو مذاق میں اڑا دے.
ہیلو، میں تمہیں، اپنی بیگم اور اپنے بیٹے، یہاں تک کہ اس پاگل لڑکی کو بھی اگر مذاق میں اڑا بھی دوں تب بھی میرا ذہنی سکون میرے لیے مذاق نہیں ہے.
کیا ہوا؟
اٹھو اٹھو، میرے گھر سے نکلو دھوکے باز مکار لڑکے. چلو جاؤ اور اب میرے گھر میں قدم مت رکھنا.
میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے. ہاں
سلام.
ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وعلیکم السلام.
کچھ کام تھا، پہلے بچوں کو اسکول چھوڑا اور پھر خریداری کے بہانے تم سے ملنے چلی آئی.
کیا وقت کم تھا، جب میں گھر آتا تب بات کر لیتی.
گھر میں یا تو بچے ہوتے ہیں یا بابا ہوتے ہیں، یا تم سو رہے ہوتے ہو خراٹے لیتے ہوئے. تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ وقت واقعی بہت کم ہے. اب زیادہ بنو نہیں ڈاکٹر، میں بابا نہیں ہوں جو تم ان کے سامنے اچھے داماد بننے کا ڈرامہ کر سکو. آج 28 رمضان ہے اور کل 29 ہے. میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ کل 29واں رمضان ہے اور پھر ٹی وی پر کسی بھی وقت یہ اعلان ہو سکتا ہے کہ پرسوں عید ہے.
تو آپ کی عید مبارک.
میں چائے نہیں پیتی، آپ باہر جائیے، باہر جائیے.
آپ کی نماز اور روزہ قبول ہو انشاءاللہ. اب تم نے روزے رکھنے شروع کر دیے.
دیکھو، میں صرف اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں. وہ بچے اور ماں جو ہر وقت مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنا سامان بند کر کے دروازے کے پاس رکھ دو. میں یہاں نہ آ کے تمہارے بغیر بھی جا سکتی تھی، مگر تم میرے شوہر ہو. مگر تم بھی میرے باپ کی طرح دھمکی دے سکتے ہو کہ تم جا سکتی ہو اور پھر پلٹ کر مت آنا. بہر صورت چاہے تم آؤ چاہے نہ آؤ، میں جاؤں گی، اپنے بچوں کے ساتھ جاؤں گی. آپ کیا کہتے ہو؟
اب کیا بول سکتا ہوں میں، تم نے تو سب کچھ کہہ ڈالا. ویسے سچ پوچھو تو میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ بہتر یہی ہوگا دو دن کی زندگی کی خاطر اپنے آپ کو خدا نہ کھڑا کر دیں.
ڈاکٹر، میرے سامنے اتنا ڈرامہ مت کرو.
تم چاہتی ہو میں سچ بول دوں؟ دیکھو، تم، امی، بچے، تم لوگ سب مل کر سامان اٹھانا، آج ہی چلے جانا، خدا حافظ. لیکن میں یہیں رکوں گا، آخری لمحے تک بابا کے پاس رہوں گا.
اچھا، تاکہ اپنی اچھائیاں اور ان کے بچوں کی بے وفائیاں گنوانے کا تمہیں اچھا موقع مل جائے، ہے نا؟
نہیں، گنوانے کی ضرورت نہیں فریدہ. اگر ہم سب چلے جائیں اور انہیں اکیلا چھوڑ دیں تو اچانک کل کو عید ہو جائے گی اور آسمان سے بلا نازل ہو کر انہیں تباہ و برباد کر دے. تم لوگ جاؤ، خدا حافظ.
اگر میں آج رات بھی جانا چاہوں تو امی راضی نہیں ہوں گی. امی کہیں گی کہ اگر کسی بلا کو نازل ہونا ہے تو عید کے دن نازل ہوگی، ویسے جو ان کے ساتھ ہوگا زد میں آئے گا. سمجھ رہے ہو؟ اب یہاں بیٹھ کر آخری لمحے کی رٹ مت لگاؤ.
تمہاری امی کو کیسے پتا؟ تمہارے چچا نے بتایا نا.
دیکھو، میں نے چچا کا قرآن دیکھ لیا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کے عجیب و غریب ہونے سے مجھے کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہ قرآن ہی تھا، اسی ہرے مخمل کے کپڑے میں. मैं तुम्हारा सूटकेस तैयार करके रख दूंगी। अगर चाहो तो हमारे साथ आ जाओ, और अगर ना आना चाहो तो यही बाबा के मालो दौलत पर चौकीदारी करते रहो।
बेचारे जमीर के कुड़ने वाले साहब को तो देखो। हेलो, अरे वालेकुम सलाम अम्मी की जान, तुम हो? इत्तफाक से मैं भी आधी रात को तुम्हारे काम से लौटने के टाइम पे तुम्हें फोन करने ही वाली थी। नहीं, बस एक बुरा ख्वाब देखा था मैंने। मैंने ख्वाब देखा कि एक देव घर में आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्दी इसकी ताबीर भी हो गई और खैर खैरियत से सब हो गया। ये बताओ कि तुम काम पे नहीं गए आज? तुम्हारी आवाज ऐसे क्यों आ रही है? सच बताओ वहीद, कुछ हुआ है क्या? बच्चों की तबीयत ठीक है? नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं होता। तुम बेफिक्र रहो। एक मिनट सब्र करो, हाँ तुम्हारे बाबा यहाँ खराटे ले रहे। सच पूछो तो वहीद, उसके जानने वाले मिल गए हैं। मैंने देखा कि वो तुम्हारे लायक नहीं थी, मैंने उसे भेज दिया। अब तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है या नहीं, कहीं तुमने भी बुरा ख्वाब तो नहीं देख लिया? हाँ, कौन खो गया और फिर उसका जनाजा मिला है तुम्हें? तुम खुद या तुम्हारी बेटी?
पनाह हो खुदा की।
کتابیست بی هیچ شک برای هدایت پرهیزکاران.